ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रशेखर शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान आपसी संबंधों के सभी पहलुओं और सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बातचीत के बाद कई समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान की उम्मीद है। श्री मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की अपनी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में कल बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया और ब्रुनेई के प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री हाजी अल मोहताजी बिल्लाह ने उनकी अगवानी की। श्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और यह यात्रा भारत ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बंदर सेरी बागवान में भारतीय उच्चायोग की नई चांसलरी का उद्घाटन किया। उन्होंने ब्रुनेई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी यात्रा के दूसरे चरण में देर रात सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर जा रहे हैं। इस दौरान दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को पूरा करने और उसे उग्रवाद, हिंसा तथा संघर्ष से मुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय अथक प्रयास कर रहा है। इससे पहले केंद्र ने पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति आज सुबह महाराष्ट्र के लातूर जिला स्थित उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ राज्यपाल सीबी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार भी रहेंगे। राष्ट्रपति उदयगिरी कॉलेज मैदान में महिला आनंद मेलावा में भी भाग लेंगी। विश्व बैंक ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से आगे बढ़ रही है और देश का मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। विश्व बैंक के नवीनतम भारत विकास अपडेट बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 7% तक पहुंचने का अनुमान है। यह 2025-26 और 26-27 में भी मजबूत रहेगा। भारत विकास अपडेट में यह भी कहा गया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.2% की तीव्र गति से आगे बढ़ा। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और डिजिटल पहल के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है, जिससे व्यापार लागत कम हो रही है। मध्य यूक्रेन के पोल्टावा शहर पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 51 लोग मारे गए और 200 से अधिक अन्य घायल हो गए। रूसी हमले में एक सैन्य संचार संस्थान और पास में बने एक अस्पताल को नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि रूसी हमले में कई सैन्यकर्मी भी मारे गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हवाई हमले का अलार्म बजने के बाद लोगों के पास बम निरोधी घरों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा के फाइनल में भारत की दीप्ति रिजीवनजी ने कांस्य पदक जीता है। दीप्ति की जीत से भारत के कुल पदकों की संख्या 16 हो गई है, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। दीप्ति ने फाइनल में 55.82 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए दीप्ति को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दीप्ति अनगणित लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, उनका कौशल और दृढ़ता सराहनीय है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।